सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धमनन्तमणिन्दियं मणुव मम पत्थसौखमणवज्रं केवलपहोहणिज्य दुर्नयतिमिरं जिनं नमः। यह धौला जो शास्त्र है, श्री वीरसेन आचार्य जी ने षटखंडागम शास्त्र की यह टीका रची है। षटखंडागम के कर्ता भूतबलि और पुष्पदंत आचार्य है और उनके जो गुरु उपदेश कर्ता जो है वे नरसेन आचार्य थे। अब यहाँ हम 98 पेज पर आए हैं। हमारा विषय कौन सा था उसकी जरा बात करेंगे हम। ये भाव प्रमाण की बात चल रही थी। भाव प्रमाण में हमने देखा था आभिनिबोधिक भाव प्रमाण, श्रुत भाव प्रमाण, अवधि भाव प्रमाण, मनपर्य भाव प्रमाण और केवल भाव प्रमाण। इस तरह से भाव प्रमाण के पांच भेद हमने देखे थे। उसमें आभिनिबोधिक कहो या मति ज्ञान कहो, उसके हमने 336 भेद देखे। तो 336 भेदों में हमने क्या क्या देखा था? एक तो ज्ञान के भेद देखे, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। उसमें निमित्त ऐसे पांच इंद्रिय और मन, उसकी अपेक्षा से भेद देखे। और जो विषय जानने में आ रहे हैं वो कैसे है, तो बहु बहु इध आदि जो 12 भेद है उसमें हमने वो सारे भेद देखे थे। तो 4 × 6 = 24 × 12 = 288 होते हैं। अवग्रह वाला जो एक भेद है उसमें व्यंजनावग्रह नाम का एक भेद होता है, उसमें आगे व्यंजनावग्रह होकर फिर अर्थावग्रह होता है, तो इसलिए उसके जो एक्स्ट्रा भेद हो गए, तो उसमें 4 ही इंद्रियां निमित्त होती है, चक्षु और मन के बिना वाली। तो वो 4 इंद्रियों के द्वारा व्यंजनावग्रह होता है। तो व्यंजनावग्रह एक, 4 इंद्रिया, तो 4 हो गए। और 12 प्रकार के पदार्थ, तो 12 × 48, तो पहले 288 और 48, 236 हमने भेद देखे थे। 336 मुझे कहना था, 336 भेद देखे थे। अब उसके बाद श्रुत भाव प्रमाण की बात चल रही है। तो श्रुत भाव प्रमाण में हमने देखा था कि मति ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ जाना है उस पदार्थ को तो छोड़ा यानी जानना, वहां से ज्ञान हटकर उस पदार्थ संबंधी अन्य चीज को जानने लगा, तो उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ जो श्रुत की जो हमने बात की थी 97 पेज पर, हमने देखा था कि ये भाव श्रुत जो है उसकी अपेक्षा से अभी वर्णन चलेगा। तो उसमें अनुपूर्वी बताया, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी आदि बातें उसमें आती है, निक्षेप लगते हैं, नए लगते हैं। अब यहाँ बात चल रही है अर्थाधिकार की। श्रुत ज्ञान के अर्थाधिकार कितने हैं, यानी श्रुत ज्ञान के जो हमने भेद किए, डिविजन्स की है, उसके प्रकार देखे, वो कितने हैं, तो उसकी बात यहाँ हो रही है। तो उसको कहते हैं अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। जो 12 अंग है उसी को अंग कहो, द्वादशांग कहो, अंग प्रविष्ट, प्रविष्ट यानी उसके इंक्लूडेड, अंतर्भूत। और जो 12 अंगों के अलावा और जो एक्स्ट्रा जो कुछ है श्रुत ज्ञान, उसको कहते हैं अंग बाह्य। एक्स्ट्रा है ना वे, तो उसको प्रकीर्णक भी कहते हैं, 14 प्रकीर्णक भी उसका नाम है। तो उसमें मुनियों के आचारों का वर्णन आता है। उसमें हमने देखा था पहले सामायिक, ये सामायिक ये अंग बाह्य श्रुत का नाम है, जिसमें सामायिक संबंधी पूरी जानकारी उसमें चर्चा की जाती है। तो ये शास्त्र का नाम भी सामायिक है। तो ये सामायिक चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरिक, महापुंडरिक और निषिद्धिका, ये 14 नाम हमने देखे थे। उसमें से हमने देखा कि सामायिक जो है उसमें समता भाव का वर्णन किया जाता है, सामायिक का, तो उसमें वो सारे निक्षेप लगाएंगे, नाम, नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक, तो इस ग्रंथ में ये सारा वर्णन होगा। चतुर्विंशति स्तव में हमने देखा कि जिस काल भी हम महावीर के बाद ये हम ग्रंथ रचना हो रही है, तो इस वर्तमान के जो 24 तीर्थंकर हैं उनके बारे में सारी उसमें जानकारी देंगे, और फिर उनका जो स्तवन है, यहाँ लिखा ना, उस काल संबंधी 24 तीर्थंकरों की वंदना करने की विधि, उनके नाम, संस्थान, उच्छेद, पंच महाकल्याणक, 34 अतिशय का स्वरूप आदि आदि उसमें बताया जाता है। उसके बाद है वंदना नाम का अधिकार। स्तव में यानी स्तवन में तो 24 तीर्थंकर लिए, वंदना में एक जिनालय और एक जिन प्रतिमा जो है, एक जिनेन्द्र देव संबंधी यहाँ वर्णन होता है। देखो, एक जिनेन्द्र देव संबंधी और उन एक जिनेन्द्र देव के अवलंबन से जिनालय संबंधी वंदना के निरवध्य भाव का यानी शुभ भाव का अर्थात प्रशस्त रूप भाव का वर्णन करता है। ये हमने पढ़ा था, हम दोहरा दे रहे इसको। उसके बाद वाला जो है वो प्रतिक्रमण नाम का अधिकार है। तो प्रतिक्रमण करने की विधि कैसी है, तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव को कंसीडर करते हुए अभी इस पंचम काल में क्या विधि होगी उसका वर्णन, अभी ये पंचम काल के ग्रंथ है तो उसमें उस अनुसार ये सारी बातें लिखी है। तो उसमें प्रतिक्रमण कौन कौन से होते हैं, तो दिवस में जो प्रमाद के कारण कुछ अतिचार लगा हो तो मुनि क्या करते हैं, आचार्य के पास जाकर वो बताते हैं या वो स्वयं मुख से बोल देते हैं और ये कैसा करना, तो इसकी बातें होती। वो दैवसिक है, रात्रिक है, पाक्षिक है। दैवसिक का अर्थ याद है, डेली ने दिवस में जो कुछ प्रमाद हुआ है वो दिवस के अंत में जो प्रतिक्रमण करना है उसको कहते हैं दैवसिक। रात्रि में जो प्रमाद के कारण जो कुछ दोष लगा है तो रात्र बीत जाने के बाद अर्ली मॉर्निंग में जो प्रतिक्रमण होगा उसको कहेंगे रात्रिक यानी रात्रि संबंधी प्रतिक्रमण। पाक्षिक यानी 15 दिन में जो कुछ दोष लगे हैं तो 15 दिन के अंत में जो वहां प्रतिक्रमण किया जाएगा उसको कहेंगे पाक्षिक। चातुर्मासिक यानी 4 महीने के बाद। सांवत्सरिक यानी पूरे साल भर में जो कुछ दोष लगा है। ऐरियापथिक यानी जब मुनि आहार के लिए विचरण करते हैं, जाके आते हैं और उसमें जो कुछ दोष लगते हैं उसका जो प्रतिक्रमण किया जाता है, यानी वन से गांव में जाएंगे, आहार ग्रहण करके वापस आएंगे, चलते समय ऐरियापथिक यानी चलते समय, खाली भोजन की बात नहीं लेना है उसमें, चलते समय विहार करते समय जो कुछ दोष लगा हो तो उसको कहते हैं ऐरियापथिक प्रतिक्रमण। और औत्तमार्थिक यानी उत्तम यानी कौन सा भव, हाँ भव के अंत में संलेखना धारण करते हैं तो पूरे भव संबंधी जो कुछ दोष लगे हो तो उस संबंधी वो ऐसे प्रतिक्रमण जो कुछ पाठ उसके विशिष्ट होते हैं वो बोल के फिर सच्चा प्रतिक्रमण तो अंतर में लीन हो जाना ही है, क्योंकि प्रमाद कैसे टालेंगे मुनि, छठा गुणस्थान ही प्रमत्त दशा है, तो प्रमाद को टालना है यानी अप्रमत्त दशा में जाना, वही प्रमाद टालना है, तो शुद्धोपयोग में जाना ही सच्चा प्रतिक्रमण है। फिर भी जब जो छठी भूमिका में है तब वो प्रतिक्रमण का ऐसा उच्चारण करके भी उसकी वो शुभ भाव रूप है प्रतिक्रमण, छठे में जो होगा वहाँ शुभ भाव है, फिर भी अंतरंग में वितरागता चल रही है उनके और शुद्धोपयोग में चले जाते हैं तो वो सच्चा प्रतिक्रमण उनका हो जाता है। नियमसार में बहुत बातें विस्तार से बताई है, अभी चल रहा है यहाँ अपना विषय। उसके बाद जो है वैनयिक नाम का अर्थाधिकार, उसमें क्या क्या बताया है, तो ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, इस तरह 5 प्रकार की विनयों का वर्णन करते हैं। उसके बाद कृति कर्म, उसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु की पूजा आदि का विधि का वर्णन करते हैं। यहाँ तक तो हमने पहले भी पढ़ा था। अब जो वैकालिक, दशवैकालिक उसका नाम है। दस तो दस नाम संख्या बताता है, वैकालिक किसको कहना? तो विशिष्ट काल को विकाल कहते हैं। वि शब्द लगता है तो विशिष्ट ऐसा अर्थ होता है, जैसे विकार, विभाव, यानी खाली खोटा भाव ऐसा नहीं, विशिष्ट भाव और विशिष्ट कार्य को भी विकार कहेंगे। हाँ, विज्ञान, विशेष ज्ञान, ऐसे यहाँ विशिष्ट काल को विकाल कहते हैं। उसमें जो विशेषता होती है उसे वैकालिक कहते हैं। वे वैकालिक दश है और उन दश वैकालिकों का, दश वैकालिक नाम का अर्थाधिकार वर्णन करता है, यानी इस शास्त्र में वो दस वैकालिक संबंधी बातें बताई जाएगी। तथा वह मुनियों की आचार विधि और गोचर विधि का भी वर्णन करता है। आचार विधि यानी आचरण, और गोचर विधि यानी जब वो आहार के लिए निकलते हैं उसको कहते हैं गोचरी, गोचरी वृत्ति। तो गोचर विधि यानी भिक्षा भी कहते, परंतु ये अन्य जो भिक्षा मांगना वो अर्थ में नहीं लेना। मुनि जो आहार के लिए निकलते हैं उसको भी वो भिक्षा वृत्ति से रहते, ऐसा भी शब्द शास्त्र में होगा, क्योंकि भिक्षु कहते थे पहले। ये जो श्रमण पद्धति है बौद्धों में भी और जैनियों में भी, तो इस तरह से जो बिना मांगे इसे याचना नहीं करते थे, बाद में उसको खराब अर्थ में उसका शब्द प्रचलित हुआ कि भीख मांगना। पर भिक्षावृत्ति से रहना यानी संन्यस्त रहना और जाके जो बुलाए उनके यहाँ आहार ग्रहण करना, ऐसी जो विशिष्ट, जो अभी व्रतियों के लिए अलग पद्धति होगी, मुनियों के लिए वो कैसे नवधा भक्तिपूर्वक जो बुलाते हैं उनके यहाँ जाकर वो आहार ग्रहण करते हैं, तो उसको गोचरी वृत्ति कहते हैं या गोचर विधि कहते हैं। अब आठ नंबर का, जिसमें अनेक प्रकार के उत्तर पढ़ने को मिलते हैं उसे उत्तराध्ययन अधिकार कहते हैं। अब ये कैसे प्रश्न हो गया वहाँ कि चार प्रकार के उपसर्गों को कैसे करना चाहिए, सहन करना चाहिए, 22 प्रकार के परिषहों के सहन करने की विधि क्या है, इत्यादि प्रश्नों के उत्तरों का वर्णन करता है ये उत्तराध्ययन में। नौ नंबर पर है कल्प व्यवहार, तो साधुओं के योग्य आचरण का और अयोग्य आचरण के होने पर वो आचरण हुआ है, वो आचरण करना। उस प्रायश्चित विधि का वर्णन करता है, यानी साधुओं में कोई उनका जो आचरण है उसमें कुछ दोष लगते हैं तो जो संघ के आचार्य है उन्हें प्रायश्चित देते हैं, प्रायश्चित बताते हैं, तो ये प्रायश्चित की जो विधि है उसका वर्णन इसमें आता है। कल्प नाम योग्य का है और व्यवहार नाम आचार का है। कल्प व्यवहार शब्द है ना, व्यवहार है आचार और कल्प है योग्य आचार। अभी कल्पाकल्प में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा मुनियों के लिए यह योग्य है और यह अयोग्य है, इस तरह इन सबका वर्णन करता है। देखिए ये सब जो शास्त्र है वो इसी पंचम काल में रचे हैं, तो पंचम काल के मुनियों के लिए क्या योग्य है क्या अयोग्य है वो सब बताया इसमें। और आजकल है नहीं नहीं नहीं, काल के अनुसार उसमें तो ये तो इतनी शिथिलता चल जाएगी, यानी शिथिलाचार का पोषण करने का अगर हमारा अभिप्राय है तो वो तो आगम से विरुद्ध है, ख्याल है। हम तो अपना माप लगाते हैं, जैसे कोई बच्चा समुद्र के किनारे जाता है और ये पानी कितना है तो ये छोटी बकेट लेके जाता है और वो बकेट से वो नापना चाहता है। वैसे हम जितने बुद्धि है या अपने में राग द्वेष है तो हम उसी मापदंड से सामने वाले को नापना चाहते हैं, क्योंकि हमें ठंडी सहन नहीं होती है, हमें भूख सहन नहीं होती है, हमें अन्य अन्य बातें चाहिए चाहिए चाहिए, तो वहाँ सामने वाला ऐसे नहीं निचल जाएगी, इतना तो चलेगा उनके लिए, ऐसा होता है ना। तो ये हम माप अपना लगाते हैं, मतलब अपने माप से नहीं चलता। भगवान वीतराग सर्वज्ञ देव ने जो बताया है मुनि का स्वरूप, वैसा ही होना चाहिए। ऐसे किसी ने जबरदस्ती तो बंदूक नहीं रखी कि चलो मुनि बन जाओ, है? परंतु ये हमें तो किसी व्यक्ति को तो देखना ही नहीं है, मुनि का स्वरूप कैसा होता है और होना चाहिए इस बात का निर्णय हमें कहना है। कोई कोई ऐसे व्यक्ति मिले, अभी हमको पुणे में भी मिले थे, तो अभी हम क्या करें, हम अभी जिस स्टेज पर है तो उससे थोड़ा ऊपर, यानी मान लो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यदि कोई मुनि की बात उठाता है, नहीं नहीं वो तो बाद में देखेंगे, पहले इतना तो हम अचीव करें तो फिर बाद में मुनि की बात देखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग में आना है, पूरा ही मोक्ष मार्ग पहले ही उसके निर्णय होना ही चाहिए। भले प्रकट करे 10 भाव के बाद कोई बात नहीं है, परंतु अभी वर्तमान में उसका निर्णय पक्का चाहिए कि चौथे गुणस्थान की ये भूमिका है, ऊपर ऊपर के गुणस्थान में ऐसा होता है, इतना कषाय इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप के उनके अनुव्रत होते हैं, मुनि होते हैं तो उनके ऐसे यानी निश्चय व्यवहार दोनों का स्वरूप, उसका बिल्कुल निर्णय अभी तो भले मिथ्यात्व की भूमिका में है, परंतु जब तक अरिहंत का स्वरूप, मुनियों का स्वरूप, आगे यानी पूरे चौथे से लेकर सिद्ध तक का स्वरूप यदि वो निश्चित नहीं करता है, उसका उसे पता नहीं है, तो उसको वो प्रकट ही नहीं होता है। ये बात है, क्योंकि जिसको अभी पढ़ा, जिसको तत्वज्ञान पता नहीं है, वो क्या दलील करता है, हमें उससे क्या लेना देना। अरे हमें ही उससे लेना देना है, हम किसी व्यक्ति को तो नहीं जांच रहे, हम अपनी मान्यता को सुधार रहे। कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र बाहर ढूंढना नहीं है, अपने अभिप्राय में जो पड़ा है, शास्त्र संबंधी विपरीत मान्यता, गुरु संबंधी विपरीत मान्यता, देव संबंधी विपरीत मान्यता, यही कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आए छठे अधिकार में ये बात आई है, यानी हमको तो हम क्या कहते हैं, हाँ ये कुदेव है, ये कुगुरु है, यानी उस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं करना है, अपनी गुरु संबंधी क्या मान्यता है उसको सुधारना है, निर्णय करना है वो सच्चा है कि झूठा है। कोई झूठा आपके हाथ में हीरा है तो आपके इमीडिएटली जाके के समुद्र में जाके फेंक देते हो क्या, वो झूठा है ऐसा निर्णय कर देते हैं, झूठा है निर्णय किया और अब हम नहीं पहने उसको तो हो गया। तो ऐसे बाह्य में कोई झूठे आपको नजर में भी आए तो हम तो उनका निषेध नहीं करना, अपना अभिप्राय देखना है कि हम उसकी जांच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सच्चा है ये झूठा, इसकी पहचान हमें है कि नहीं है, इतना देखना है। उनको देख देख कर स्वयं कषाई नहीं होना है। तो ये जो बात है, यहाँ देखो कल्पाकल्प में क्या बताया, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा मुनियों के लिए यह योग्य है और यह अयोग्य है, इस तरह इन सबका वर्णन करता है। तो ये जो योग्य अयोग्य जो शास्त्र में बताया है वो चलेगा, हम अपनी मति कल्पना से नहीं, नहीं ये अभी योग्य होगा ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, उसको आगम का आधार हो और उसमें योग्य अयोग्य जो बताया है उसी को स्वीकार करना चाहिए, यह हमारा परम कर्तव्य है। अब जो महाकल्प है उसमें काल और सहनन का आश्रय कर साधुओं के योग्य द्रव्य और क्षेत्रादि का वर्णन करता है। अभी जैसे पंचम काल है तो पहले तीन सहनन इस काल में पाए नहीं जाते, नीचे के जो तीन सहनन है कौन से, छह सहनन के नाम याद है, बोलो, वज्रषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलित और हाँ असंप्राप्ता स्वरूपाटिका, यानी असंप्राप्त अस्वरूपाटिका तप्ता हो जाता है, असंप्राप्ता स्वरूपाटिका सहनन, ये जो छह सहनन है ऊपर के तीन उत्कृष्ट कहलाते हैं और नीचे के तीन वो हीन सहनन कहलाते हैं। तो पंचम काल में तो हीन ही सहनन है और ये पंचम काल के ही शास्त्र है, ख्याल है, आचार्यों ने भी आगे जाके षटखंडागम वगैरह लिखे तो इसी काल के आचार्यों ने लिखा है उसको। तो इसमें काल और सहनन का आश्रय कर साधुओं के योग्य द्रव्य और क्षेत्रादि का वर्णन करता है। इसमें उत्कृष्ट सहनन आदि विशिष्ट द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय लेकर प्रवृत्ति करने वाले जिनकल्पी साधुओं के योग्य। देखो, जिनकल्पी यानी जो एकाकी विचरते हैं, संघ में नहीं रहते हैं, जैसे जिनेंद्र भगवान, जो तीर्थंकर होने वाला जो जीव है। अभी महावीर की बात करेंगे, तो बालक महावीर, फिर युवा हो गए और जब दीक्षा ली तो किसी गुरु के पास जाकर, मुनि के पास जाकर मुझे दीक्षा दे दो, ऐसी दीक्षा नहीं ग्रहण की, तो स्वयं दीक्षित हो गए वे। ओम नमः सिद्धेभ्यः कहकर वस्त्र आभूषण का, यानी वस्त्र आभूषण सबका त्याग किया, केश लोच कर दिया और फिर दिगंबर मुद्रा धारण की और मुनि बन गए वे स्वयं। और वो एकाकी विचरते थे, संघों में नहीं थे, कोई शिष्य प्रशिष्य नहीं थे उनके, तब जब यहाँ यानी मुनि अवस्था धारण की थी तब। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको कहते हैं जिनकल्पी। और स्थविर कल्पी यानी कि जो संघ में रहते हैं, आचार्य होते हैं, मुनि संघ होता है और उस संघ की यानी आचार्यों की आज्ञा में ही वे रहेंगे। तो जो जिनकल्पी साधु हैं, स्थविर कल्पी, आगे आगे बात आए, उसी लाइन में आगे लिखा है। तो जो जिनकल्पी साधु है और जो उत्तम सहनन वाले हैं, तो उनके योग्य त्रिकाल योग आदि अनुष्ठान का। त्रिकाल योग जो हमने वो प्रतिमा योग आदि जो बातें देखी थी ना, ये देखे त्यक्त, च्युत चावित और त्यक्त, उसके भी तीन भेद देखे थे, प्रायोपगमन आदि। प्रायोपगमन, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान, ऐसे हमने तीन भेद देखे थे। तो उसमें ये जो अन्य अन्य जो योग धारण करने की बात आती है तो उस संबंधी उसका वर्णन करते हैं। और स्थविर कल्पी साधुओं की दीक्षा, शिक्षा, गण पोषण, आत्म संस्कार, संलेखना आदि का विशेष वर्णन है। यानी संघ में रहने वालों के लिए वो किस तरह से दीक्षित होते हैं, आचार्य कैसे उनके दीक्षा देते हैं, उनकी शिक्षा वगैरह यानी वहाँ का उपदेश कौन देता है उनको, उपाध्याय उनके शिक्षा देते हैं उनको, वो किस तरह से ग्रहण करते हैं, उनके क्या आचार विधि होती है, आचरण कैसे होता है उनका, सुबह से उठकर फिर पूरे दिन की चर्या कैसी होती है, ये सब का वर्णन उसमें आता है। देखो अब पुंडरिक, ये पुंडरिक नाम का भी ये जो बारवा अंग बाह्य श्रुत है उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। गण यानी जो संघ जो है, संघ में रहते ना मुनि गण कहते ना, गण यानी समूह, गण पोषण यानी संघ में रहने वाले मुनियों का किस तरह से वहाँ निर्वाह होता है उनका, उसकी बात चलते हैं। यानी वो जैसे अभी मिलिट्री में है तो उसके कोई अपने रूल्स होते हैं ना, वैसे यहाँ आचार्य के अंदर रहते हैं सब साधुगण, तो उनके भी विशिष्ट आचरण के नियम रहते हैं, तो उसको कहेंगे वो उनके पोषण करते हैं, गण पोषण करते हैं आचार्य। पोषण यानी जैसे माँ बच्चे के पीछे लगती है और उसका लालन पालन पोषण करती है, उसकी बात नहीं है, ये तो मोक्ष मार्ग पर कैसे वो स्थित रहे इस अपेक्षा से उनके जो प्रायश्चित देना, उनसे वो जो वो कहेंगे उसको सुन लेना आदि आदि जो बातें होती है आचार्यों के अंदर, वो होती है यहाँ गण पोषण कहते हैं। अब जो पुंडरीक नाम का जो है अंग बाह्य श्रुत, उसमें क्या बताते हैं, तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषकर, कल्पवासी, पहले तीन को मिलकर एक क्या नाम है याद है क्या प्रेरणा बेन? भवनत्रिक, भवनत्रिक में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, और कल्पवासी कहो या विमानवासी कहो, यानी पहले से 16वें तक के स्वर्ग उसको कहेंगे कल्पवासी, ऊपर के ग्रहवेयकों को भी कल्पवासी कहेंगे, उसके ऊपर अनुदिश है, उसके ऊपर अनुत्तर है, सबको कल्पवासी कहेंगे। इन चार प्रकार के देवों, यानी देवों के अगर चार भेद करते हैं तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी, तो उनमें उत्पत्ति के कारण रूप यानी वहां जो जन्म लेते हैं, तो ऐसा कौन सा भाव किया था कि जिस कारण इसमें जन्म हुआ। ये भवनत्रिक तो है तो हीन प्रकार के देव, फिर भी देवगति है और वहां भी वैभव आदि जो चीजें पाई जाती है, व्यंतरों के और भवनवासियों के भवनों का अगर हम वर्णन देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं शास्त्र में, तो रत्नों के आदि आदि महल होते हैं और वहाँ कैसा कैसा वैभव पाया जाता है। तो उसमें जो उत्पत्ति के कारण रूप ऐसा क्या क्या है, दान, पूजा, तपश्चरण, अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का अर्थ मालूम है? देखो, हर समय हम बंद करते हैं और हर समय पुराने बांधे हुए कर्म खिर जाते हैं। जिसका जिसका समय पूरा हुआ है वो निकल जाते हैं, बराबर, तो उसको भी निर्जरा कहने में आती है। परंतु ये जो कोई कठिन प्रसंग किसी पर आया, उपसर्ग हुआ और उसने शांति, कोई रोग हुआ और बहुत रोना धोना नहीं करते हुए शांति से उसने उसको सहन कर दिया, परंतु उससे जो निर्जरा होगी वो मोक्ष मार्ग में कुछ काम की नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं अकाम निर्जरा। फिर भी वहां जो शांत परिणाम उसके कुछ शांत यानी समाधानी वृत्ति है, संतोष है, या ज्यादा रोना धोना नहीं उसने किया है, शांति से सहन किया है, तो उसको भी ऐसे शुभ भाव है ना, ये उसके फलस्वरूप उसको भवनत्रिका आदि अन्य अन्य पर्याय मिल जाती है, तो उसको कहते हैं अकाम निर्जरा। सम्यक दृष्टि में तो दूसरी भी वो हो ही, हाँ, यानी वो अविपाक भी हो ही रही है, अभी उसके निर्जरा दोनों होती है, वो अलग अलग निर्जरा तो है ही नहीं है, ख्याल है ना, तो वहां तो उसके तो अभी यानी अनुभाग कम होकर निकल रहे और उसमें उसकी एकत्व बुद्धि नहीं है। अकाम निर्जरा वाले के वो मुख्यतः मिथ्यात्व की दृष्टि से यहाँ बताया अकाम निर्जरा, जो मोक्ष मार्ग में कुछ काम वाली नहीं है। सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा हो रही है तो उसको तो वो हम अविपाक निर्जरा नाम दे ही रहे हैं।
ऐसा भी हो सकेगा ना कि जो अभी मुनि अवस्था में जीव है उनके जो 22 परिषद सहन करने के जो शुभ परिणाम है, उन शुभ परिणामों के कारण से भी हो सकता है, अभी अंतरंग में स्थिर हो जाए तो वो तो निश्चय परिषद सहन हुआ।
नहीं नहीं, सहन होना यानी क्या है कि उस परिषदों में
एकत्व बुद्धि नहीं,
एकत्व बुद्धि भी नहीं है और उसमें उनके कोई ये उत्पन्न ही नहीं। अकाम निर्जरा में क्या है कि वो परिषय है, वो त्रासदायक है, यानी वहाँ कुछ दुख की अनुभूति भी चल रही है उसके साथ। और मुनियों की जो है उसमें उस प्रतिकूल संयोगों में उनकी दुख की अनुभूति नहीं है।
मुझे लगता है दोनों होने चाहिए,
उनकी तो अविपाक निर्जरा होने से असंख्यात गुण निर्जरा हो रही है। हो सकता है ना, अभी वो दोनों यानी चौथे वाले की अपेक्षा से उसको भी ले सकते हैं।
हाँ, वही मैं तो उदाहरण के लिए मुनियों की बात की, लेकिन बात तो ये है कि सम्यक दृष्टि के भी होगी वो, क्योंकि देखो अगर हम
यानी उसके दो अलग अलग निर्जराएं नहीं चल रही, जैसे असाता वेदिनी का उदय हो रहा है, उदय को ही निर्जरा कहने में आता है, यानी उसके परमाणु जो छूट कर निकल जा रहे हैं वही उसकी निर्जरा है। ऐसे नहीं कि अकाम निर्जरा नाम के कोई अलग परमाणु निकल लेंगे और अविपाक के वाले अलग परमाणु निकलेंगे, परमाणु तो उसके उदय का फल देकर निकल रहे हैं। अब उदय के फल में यह नहीं जुड़ रहा है, अकाम निर्जरा वाला क्या है, वो शांति से भोग रहा है, ख्याल है ना, यानी नया कर्मबंध तीव्र संक्लेश परिणाम नहीं करता है, यह अकाम निर्जरा है। जो सम्यक दृष्टि है भले संक्लेश परिणाम में भी हो, वो अभी ये बात सुन लो संक्लेश परिणाम हो तो भी उसका उसमें वो वैसा जुड़ना नहीं है उसका, तो उसकी वो निर्जरा तो उसकी भी हो रही है, उसके भी कोई असाता का आदि उदय चल रहा है, परंतु फिर भी उससे अपना भिन्न अस्तित्व उसके हर समय उसका पहचान उसके जिसको कहते हैं परिणति में वो चल रहा है। अविपाक की देखो, अभी निर्जरा जो है वो तो हम ये दो अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है, या तो हम सकाम और अकाम कहेंगे उसको, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। अभी उसमें हम अपनी सहूलियत के लिए आप समझने के लिए अकाम यानी मोक्ष मार्ग में कुछ कार्यकारी नहीं है तो उसको हम अकाम कहेंगे, और सकाम यानी ये मोक्ष मार्ग वाली जो संवर पूर्वक वाली जो निर्जरा है उसको हम सकाम निर्जरा कहेंगे। ये एक टाइप ऑफ वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हुआ। अब हमको उसको अलग टाइप से प्रस्तुत करना है तो हम उसके दो भेद करेंगे, एक है सविपाक निर्जरा और एक है अविपाक निर्जरा। विपाक यानी कर्मों का फल, क्या दो नाम कौन से बताए? सविपाक और अविपाक। विपाक यानी कर्मों का फल मिलना। अभी सविपाक निर्जरा सब लोगों की चल ही रही है कि जिसकी जिसकी स्थिति पूरी हुई है जिन जिन कर्मों की, वो कर्म फल देकर निकल जाते हैं तो उसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। अभी अविपाक में कैसे है? तो जैसे असाता वेदनीय तीव्र वाला है परंतु वो साता रूप परिणमित होकर उदय में आवे तो उसका फल नहीं मिला, परमाणु तो निकल गए। अन्य अन्य अविपाक निर्जरा के बहुत अलग अलग, हम यह बहुत तीव्र बांधा था पहले, अत्यंत मंद हुआ, अब मंद होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वैसे तीव्र भी किसी के उदय आवे परंतु उसमें वो जुड़े नहीं, परमाणु तो निकल ही जाने वाले हैं, तो उसके कारण अगर बहुत संक्लेश परिणाम करता तो और तीव्र बंद होता। अब मुनि की बात करेंगे, यानी जितना मोह है उतना उसमें जुड़ना होता है। मुनियों के ना मिथ्यात्व है ना राग द्वेष उस टाइप के उसमें हो रहे, प्रतिकूल संयोगों में उनका ये कुछ नहीं हो रहा है, और उनकी जो निर्जरा है तो अधिक मात्रा में हो रही है। हमारी कैसी होगी? एक समय प्रबद्ध बंध रहा है, एक समय प्रबद्ध निकल रहा है। मुनियों के क्या होगा? एक समय प्रबद्ध बंध रहा है और असंख्या समय प्रबद्ध निकल जा रहे, निर्जरा हो रही है। तो उनकी जो निर्जरा है उनको कहेंगे हम अविपाक निर्जरा, यानी कर्म का ऐसा फल नहीं भोगना पड़ता है, तो उसको अभी ये बातें आगे आएगी हम देखेंगे उसको निर्जरा के प्रकरण में, अविपाक और सविपाक। अभी तो यहाँ क्या है, शांति से कोई बात सहन करके वो प्रसंग टल जाता है तो उसको, यानी ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी सभी को ये हो सकती है अकाम निर्जरा। सम्यक दर्शन और संयम आदि अनुष्ठानों का वर्णन करता है ये पुंडरिक जो है, उसमें ये सारी बातें आती हैं। अब महापुंडरिक, उसमें समस्त इंद्र और प्रतिंद्रों में उत्पत्ति के कारण रूप तपो विशेष आदि आचरण का वर्णन करता है। पहले तो व्यंतरवासी भवन ज्योतिषी और कल्पवासी देव, परंतु उसमें सामान्य देव ले लिए। अब यह इंद्रों की बात कर रहे क्योंकि जिनके तप अधिक है तो उनके विशेष पद प्राप्त होता है, क्योंकि शुभ भाव या शुभ भाव के फलस्वरूप है ये सब। तो मुनियों के जो विशेष तप होता है तो उसके फलस्वरूप ये जो इंद्र प्रतिंद्र आदि उनको पद मिल जाता है, उसका वर्णन इसमें है। फिर पढ़ती इसको, महापुंडरिक। अब ये 13वां हमारा चल रहा है, अंग बाह्य श्रुत का ये 13वां जो अधिकार है, उसमें समस्त इंद्र और प्रतिंद्रों में उत्पत्ति के कारण रूप तपो विशेष आदि आचरण का वर्णन करता है ये अंग बाह्य श्रुत। और जो अंतिम है निषिद्धि का, तो निषिद्धि किसको कहना? प्रमाद जन्य दोषों के निराकरण करने को निषिद्धि कहते हैं। प्रमाद के कारण छठे गुणस्थान में मुनियों के द्वारा जो कुछ अतिचार लगते हैं, जो कुछ दोष लगते हैं, तो उसका निराकरण करना, यानी वो मुनि क्या करते हैं, आचार्य के सामने जाते हैं, मुझसे ऐसा दोष हुआ ऐसा वर्णन करते हैं विनय के साथ, और फिर आचार्य उनका प्रायश्चित देते हैं, उसका निराकरण करते हैं दोषों का, तो उसको कहते हैं निषिद्धि। और इस निषिद्धि अर्थात बहुत प्रकार के प्रायश्चित के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को निषिद्धि का कहते हैं। यानी प्रायश्चित कौन से दोष के लिए कैसा होना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, ऐसी जो बातें होती है ये उसका अलग शास्त्र है, उसको निषिद्धिका कहते हैं। इस तरह से हमने ये 14 अधिकार देखे, किसके देखे? अंग बाह्य के। अब अंग प्रविष्ट यानी जिसको 12 अंग कहते हैं उसकी बात अब कहेंगे। अब अंग प्रविष्ट के अर्थाधिकार 12 प्रकार के हैं। अर्थाधिकार यानी अभी उसमें हम कहते हैं कितने लेसन है इस पुस्तक में, वैसे अधिकार कितने हैं, उसके अध्याय कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं, तो अंग प्रविष्ट के अर्थाधिकार 12 प्रकार के है, इसका अर्थ होता है 12 अंग है। द्वादशांग वाणी का नाम है द्वादशांग वाणी, यानी इसमें 12 अंगों की रचना है। वे कौन कौन से हैं? तो अभी ये 12 नाम बताएंगे। पहले आचार सूत्रकृत, इन्हें हम अपनी भाषा में कहेंगे तो आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, ये नाम शायद आपको परिचय में या पहले कभी सुने होंगे तो याद करना। हाँ, सरस्वती पूजन में भी आता है। समवाय, यानी उसको कहेंगे समवायांग। व्याख्या प्रज्ञप्ति, नाथ धर्म कथा, इसका और एक नाम है, याद है किसी को? ज्ञातृ धर्म कथा, नाथ धर्म कथा के लिए एक नाम और आता है, आएगा शायद आगे कहीं। उपासकाध्ययन, अभी है प्रत्येक अंग का विषय, यानी उसमें कौन कौन सी बातें वर्णित की है उसकी चर्चा आप करेंगे। पहले तो नाम बता रहे। अंतकृत दशा, यानी अंतकृत दशांग कहेंगे हम, इस शास्त्र का नाम है अंतकृत दशांग। फिर अनुत्तरोपपादिक दशा, अनुत्तर नाम सुना है कभी? हाँ हाँ, पांच अनुत्तर, आके वो सर्वार सिद्धि और उसके बाजू वाले चार, विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, और बीच वाला सर्वार सिद्धि। ये जो अंतिम पांच विमान है उसको कहते हैं अनुत्तर विमान, और उसमें उपपाद यानी वहां जन्म होता है, देवों के उप जन्म को वो उपपाद जन्म कहते हैं। तो अनुत्तर में जो जन्म लेने लेते हैं तो उसको कहेंगे अनुत्तरोपपाद। और ऐसे 10 मुनि होते हैं जो उपसर्ग सहन करते हैं और वहाँ अनुत्तर में विमान में उत्पन्न होते हैं, उसकी बात आएगी अभी आगे, तो उनका वर्णन इसमें होता है, तो उसको कहेंगे अनुत्तरोपपादिक दशांग। और पहले हमने कौन सा देखा था अभी अभी? अंतकृत दशांग। तो प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10-10 उपसर्ग केवल ही होते हैं। उपसर्ग होता है केवल ज्ञान होता है, फिर उनके अतिशय उत्पन्न होते हैं, इंद्र आदि आके पूजा करते हैं, उनको केवल ज्ञान होकर मोक्ष भी हो जाता है, तो उनको कहते हैं अंतकृत दशांग। और ये अनुत्तरोपपाद दशांग, ये इनको भी उपसर्ग हुआ है, उनका भी उपसर्ग दूर हो जाता है, परंतु वे भी निर्वाण नहीं होगा उनका, ये अनुत्तर विमान में उत्पन्न हो गए, वहां से आकर निर्वाण होने वाला है अगले भव में। हाँ, दो पांडव जो थे वैसे ऐसे जो होते हैं हर एक तीर्थंकर के काल में 10-10 होते हैं, तो उनकी बात यहाँ बताएंगे इसमें। फिर प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और 12वां है उसका नाम है दृष्टिवाद। इनमें से अभी हर एक अंग में कितने पद है और उसका विषय क्या है उसकी चर्चा आप करेंगे यहाँ। इनमें से आचारांग 18,000 पदों के द्वारा, कितने पद बताए इसमें? ये पद क्या होता है? हाँ, शब्दों का समूह, उसको कहते हैं पद। देखिए, हम तो एक कोई वाक्य लिखेंगे या बोलेंगे कि मैंने आम खाया, तो एक पद हो गया, खाली आम कहेंगे तो भी वो पद हो गया, क्योंकि वर्ड हुआ, यानी वर्ड हो या उसका वाक्य जो है तो उसको हम पद कहेंगे, ये अपनी लौकिक भाषा में इसको पद कहेंगे। परंतु जब यहाँ आचारांग आदि के पदों का वर्णन है, उसमें 18,000 पद है, तो उस उन पदों को कहते हैं मध्यम पद। क्या कहते हैं? मध्यम पद। अभी पद तीन प्रकार के हैं, पहला है अर्थपद। अर्थपद यानी कोई भी शब्द कि जो उच्चार करते हैं हमको उसको कुछ ना कुछ मीनिंग हमको ख्याल में आता है, यानी जैसे ढ और ग दो अक्षर लिखे तो ढग, यानी वो मेघ हमारे ख्याल में आ गए। कोई भी शक्कर तीन शब्द लिखे, तीन अक्षर लिखे, तो उसके द्वारा हमको वो शब्द तैयार हुआ, तो एक पद है, उसके द्वारा हमको कोई भी अर्थ भाषित हो जाता है। आकाश ऐसा हमने लिखा, फूल, तो इसमें से अर्थ भाषित होता है, इसको कहते हैं अर्थपद। दूसरा होता है प्रमाण पद। प्रमाण करते विशिष्ट मात्रा में शब्दों की अक्षरों की संख्या यानी फिक्स नंबर ऑफ लेटर्स। जैसे हम कोई भी श्लोक कहते हैं नमस्समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, चार हमने अलग अलग ये पद है, तो एक एक पद में कितने कितने अक्षर अभी हमने गिने, नमस्समय साराय आठ, हर एक में आठ आठ अक्षर है, आठ अक्षरों के समूह को यहाँ एक एक पद कहा। ये रत्न शकरण शावकाचार में भी है ना, क्या है शुरू में, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, आठ आठ का है समूह, तो इसको कहेंगे हम प्रमाण पद। ये दो पद तो ख्याल में आए। अब ये जो द्वादशांग की रचना जिन पदों के द्वारा हुई है उसको कहते हैं मध्यम पद। मध्यम यानी इन दोनों के इन बिटवीन वाला नहीं है। मध्यम पदों में अक्षरों की संख्या कितनी होती है उसकी अभी बात करेंगे। यहाँ तो अक्षरों की संख्या हमने देखी, तो यहाँ तो कितने भी है, दो तीन भी अक्षरों से एक शब्द बन गया, ये अर्थ पद हुआ। प्रमाण पद में हमने देखा था आठ आठ अक्षरों का एक एक समूह देखा था, कहीं सोलह अक्षरों का होगा, जो अलग अलग छंद आते हैं ना हम, कहीं अनुष्टुप होता है, कहीं हरिगीत होता है, कहीं ये मंदाक्रांता उपेंद्र वज्रा शार्दुल विक्रीड, उसकी अपनी अपनी संख्या निश्चित है, उसको हम प्रमाण पद कहेंगे। और मध्य और इसमें क्या है, एक ही लेटर बार बार रिपीट हुआ तो भी वो आठ की संख्या, उसको हम कहें नमः समय साराय स और सा आया, स शब्द दो बार आया, स अक्षर, फिर भी हमने आठ के आठ गिने, उसको दो बार आया तो हमने दो बार गिने। मध्यम पद ऐसा है कोई भी लेटर दोबारा आता है तो दोबारा गिनना नहीं, दोबारा आवे तो आवे परंतु उसको गिनेंगे एक बार, उसको कहते अपुनरुक्त अक्षरों की संख्या। जैसे हमने अंग्रेजी की बहुत बड़ी नॉवेल पढ़ी तो उसमें कितने लेटर्स है, 26 ए से लेकर झेड तक, उसके अलावा और कुछ नहीं उसमें, तो अपुनरुक्त अक्षर कितने हैं, बहुत बड़ा कोई भी ग्रंथ निकालो आप अंग्रेजी का तो हम बिना पढ़े भी कहेंगे इसमें अपुनरुक्त अक्षर कितने हैं, तो 26 है। वैसे जिनवानी में ये पदों में अपुनरुक्त अक्षर कितने होते हैं, हाँ ये तो टोटल अक्षर कितने होते हैं उसकी बात है। देखो टोटल अक्षर कितने, जैसे अंग्रेजी में 26 लेटर्स है वैसे अक्षरों की टोटल संख्या कितनी है उसको हमको निकालना है। तो हम कहते स्वर और व्यंजन होते हैं, हाँ हाँ, तो ये 27 और 33 ऐसे होते हैं, ये 64 होते हैं टोटल समझ लो, उसके डिटेल हम बाद में देखेंगे। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, और उसमें कोई वो अनुनासिक वगैरह उसको अलग नाम होता है, योगवाही कैसा कुछ नाम है ना उसका, योगवाहा नाम कहते हैं। तो ऐसे सब मिलकर 64 अलग अलग लेटर्स है, ये तो सिंगल हुए परंतु इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे जोड़ाक्षर जिसको हम कहते हैं, विद्या कहते हैं हम तो द प्लस य प्लस यानी द य प्लस आ, ये द्या हो गया, या हम विंध्य कहेंगे तो इसे न और न प्लस द प्लस ध्य हुए ना, बीच में ह भी आ गया तो विंध्य हो गया, तो इतने का वो समूह हो गया, यानी इसको मिलकर हम एक शब्द कहेंगे, एक अक्षर कहेंगे, जोड़ाक्षर जिसको कहते हैं, जिसको संयोगी अक्षर कहेंगे। तो 64 में कितने संयोग हो सकते हैं, लेटर्स 64 और उसके कॉम्बिनेशंस कितने हो सकेंगे उसको निकालना है। जैसे हम देखते हैं कोई भी तीन ए बी और सी, तीन ही लेटर्स है, अब इसमें कॉम्बिनेशंस कितने कितने हो गए, हर एक को एक एक ही बार लेंगे, जिसको एक एक ए को एक बार, बी को एक बार, सी को एक बार, वो तीन आ गए, अभी दो दो का कॉम्बिनेशन लेना है। दो दो का कॉम्बिनेशन में क्या लेना, ए को छोड़ना क्योंकि उसके पहले का कुछ नहीं है, बी से लेना, यानी ए बी, ए सी और बी सी, ये तीन हो गए। अब तीन का कॉम्बिनेशन ए बी सी, ये तीन का कॉम्बिनेशन एक बार आएगा, यानी अगर तीन कोई चीजें हो गई या तीन लेटर्स होते हैं तो उसमें कितने भी अब कॉम्बिनेशन सोचो तो ये तो हो गए सात हो गए, और चार हो गए तो कितने हो गए, ये तो बहुत लंबा लंबा चलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। तीन है ना, तो तीन बार दो संख्या लिखो, आपस में गुणा करो और माइनस एक कर दो। ये जो सप्तभंगी है ये ना, सात ही भंग क्यों, ज्यादा क्यों नहीं है, तो सात ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य। फिर हम क्या कहते हैं, ये तीन हो गए ना, अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य तीन हो गए। अब दो दो को संयोग करो, अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, फिर नास्ति अवक्तव्य, और तीनों का मिलकर अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये एबीसी के फॉर्मूला में उसको डाल दो, यानी तीन बातें होगी तो सात ही भंग यानी कॉम्बिनेशन हो गए। अभी हमारे पास कितने हैं, 64 है, तो 64 बार दो संख्या को आपस में गुणा करो और माइनस वन कर दो। तो ये कैसा निकालना, अभी इतना बड़ा है ना, तो हमारे पास एक गणित में द्विरूप धारा बताई जाती है, द्विरूप वर्ग धारा उसको कहते हैं, द्विरूप दो का वर्ग, उससे ये धारा चालू हो जाती है। दो का वर्ग है चार, अब इसका वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग करना है हमको, तो इसका चार का वर्ग होगा 16, दूसरे स्थान पर आए ना ये, तीसरे स्थान पर 16 का वर्ग है 256, चौथे स्थान पर उसका नाम है पन्नट्टी, यानी 65536, उसका पन्नट्टी का वर्ग करो तो बादल आता है। पन्नट्टी तो 5 डिजिट संख्या है, ये बादल 10 डिजिट वाली है, स्टार्ट्स विद 42, इसलिए उसका नाम है बादल। बादल का वर्ग करो तो उसका नाम है इकट्ठी, 18 से शुरू होता है ना वो 20 डिजिट संख्या है। अब ये तो मैंने यहां तक संख्याएं बताई, अभी इसका अर्धच्छेद का अर्थ क्या है, इसमें दो संख्या कितने बार गुणा करेंगे तो चार आता है, दो बार, तो हम इसका अर्धच्छेद कहलाता है, ये दो है। 16 में दो संख्या कितने बार गुणा करो तो 16 आती है, हाँ देखो इसके लिए क्या है, ये वर्ग का वर्ग किया ना तो अर्धच्छेद डबल हो जाता है, यहाँ दो है तो यहाँ चार आ जाएगी। 256 में दो संख्या कितनी बार गुणा करना पड़ेगी, अभी इसको डबल करो, 8 बार, पन्नट्टी में 16 बार, बादाल में 32 बार और यहाँ 64 बार, जो हमको निकालना था, क्योंकि हमने दो संख्या 64 बार लिखकर आपस में गुणा करनी है तो वो इकट्ठी नाम की संख्या आ जाएगी जो 20 डिजिट्स वाली है, उसमें से एक माइनस करने को नहीं भूलना। तो इतने अपुनरुक्त अक्षर है, टोटल अक्षरों की संख्या इतनी है। अब ये पद में कितने अक्षर होते हैं वो तो हमारा विषय चल रहा है, एक पद में कितने अक्षर है, टोटल अक्षर कितने हैं, तो इकट्ठी माइनस एक। अब इसमें एक एक पद में कितने अक्षर है, यानी इतने अक्षरों का एक पद, ऐसे किसी विशिष्ट अक्षर अंग में, आचार अंग में ऐसे पद कितने हैं, तो हम कहते 18,000 पद है, तो ये पद कितना बताम बड़ा है डॉक्टर को याद है, 1634 करोड़, हाँ 83 लाख, आगे 788 के, जरा पीछे वो समय ज्ञान चंद्रिका निकालना भाई, इतने अक्षरों का एक पद है और इसको कहते हैं अपुनरुक्त अक्षर, यानी समझो अ अक्षर है या ह अक्षर है या स अक्षर है, 100 बार आया फिर भी उसको एक बार गिनना है, यानी वो एक एक पद कितना बड़ा हुआ, और ऐसा एक मध्यम पद ने ऐसे 18,000 मध्यम पदों के द्वारा आचार अंग शास्त्र की रचना हुई है। यानी वो शास्त्र के कितने मूल जो अंग जो है, जिसको हम कहते हैं द्वादशांग, उनकी इतनी बड़ी उसका ये प्रमाण है। अरे एकदम वही निकला, 18 आचार अंग। नहीं, ये ज्ञान मार्ग नाम है। एक मिनट है, अभी निकलेगा। आपके उसमें मिल रहा है क्या? ये पदों की संख्या इसमें 516 वगैरह है, उसके आजू बाजू में है। 1634 कहाँ आया इसमें? इसमें अंगों की तो बात है, 492 के आजू बाजू में देखना, वो द्विसंयोगी वगैरह वहाँ आया। 1634 करोड़ 83,07,888, 490 पेज पर है। देखो लिखना, एक पद इज इक्वल टू, उसमें अपुनरुक्त अक्षरों की संख्या बता रही हूँ। एक पद में, एक मध्यम पद में अपुनरुक्त अक्षरों की संख्या 1634 करोड़ 83,07,000, यानी 07 आएगा आगे, 888, यानी कैसे लिखेंगे? 490 पेज पर है। देखो 1634 पहले लिखा, कॉमा देना, फिर 83 लिख देना, उसके बाद 07888। ये अपुनरुक्त अक्षर है। चार सौ नब्बे पेज पर है, समय ज्ञान चंद्रिका जीवकांड में 490 पेज पर है ये। इसमें भी ज्ञान मार्गणा में आने वाली बात है, क्योंकि उसमें कहाँ से निकली ख्याल है, आगे चलकर आएगी, मगर अभी तो ये अपुनरुक्त ने रिपीट हुआ है, फिर भी एक बार गिनना। हाँ, उसको कहना अपुनरुक्त। एक मध्यम पद में इतने, अभी हमने टोटल नंबर कितने देखे, 31-1, ये टोटल अक्षरों की संख्या है, और उसमें एक एक पद कितना है, 1634 करोड़ 83,07,888 एक पद, बराबर 31-1, ये पूरे अक्षरों की संख्या इतनी है, और एक पद इतने इतने का है। अभी ऐसे आचारांग में 18,000 पद है, यानी दिस मल्टीप्लाइड बाय 18,000 वो आचार अंग के हो गए, ख्याल है ना? अभी जहां ये जो संख्या लिखी है आगे आगे, हमें तो अनइमेजिनेबल लगता है ये सब। 31 में से बात करना है, ऊपर ऊपर इसमें से बात करना, और फिर डिवाइडेड बाय दिस। ये एक पद हुआ, देखो हम टोटल पदों की जब संख्या निकालेंगे, इस टोटल पदों 12 अंगों की टोटल पद कितने हैं, तो यदि इसको हम भाग देंगे, जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ तक आए तो सभी पूरा ही बता दूँ ना, 100
ये जो फिगर है इसमें से माइनस 1 नहीं करना
है, नहीं नहीं देखो ऐसा हम क्या अभी हम मान लेते हैं कि 100 है हमारे, इकट्ठी माइनस 1 के बदले में हमने 100 लिया और एक पद की संख्या हम मान लेते हैं 7 है मानने के लिए, तो इसको हम भाग देंगे तो 7 के 7 30 रह गए, 728 पूरा भाग तो 14 का गया और ऊपर कितने बाकी रहे, 2 बाकी रहे। वैसे 12 अंगों के पद कितने हैं टोटल, तो 112 करोड़ समथिंग, तो इससे हम भाग देते हैं इकट्ठी माइनस 1 को 1634 करोड़ 83 लाख 7888 से डिवाइड करते हैं तो उसकी संख्या फुल फिगर में आती है 112 करोड़। आगे आप पढ़ना उसमें से 12 अंगों की टोटल जो पदों की संख्या है तो 112 करोड़ 83 लाख 58 हजार और 5 यानी 112 फिर 83 58 हजार यानी 58 फिर 005 यानी 58005। ये 12 अंगों के पद है, यानी हमने क्या किया, इकट्ठी माइनस 1 को 1634 करोड़ उस जो संख्या है उससे डिवाइड किया तो फुल फिगर कितनी आई, 112 करोड़ 83 लाख 58 हजार और 5। और इतना फुल फिगर आई, जैसे यहाँ फुल फिगर हमारी 14 आई थी और 2 बाकी रहे थे, वैसे इतना टोटल भाग इसको दिया तो 112 करोड़ वो संख्या आ गई और कुछ अक्षर रह गए, यानी अंगों के इतने पद हुए 112 करोड़ और जो बच गए अक्षर उसमें से अंग बाह्य श्रुत की रचना है, यानी अंग बाह्य श्रुत में कितने अक्षर है तो रिमेनिंग, ख्याल है ना, टोटल हिसाब ख्याल में आया। जैसे हमने 100 को 7 से डिवाइड किया तो 14 का फुल उसका भागाकार गया और 2 बाकी रह गए, वैसे हाँ रिमाइंडर माँ थी वो अंग बाह्य के अक्षरों की संख्या है रिमाइंडर, और अंगों के में अंगों में कितने आए अक्षर तो वो इतने तो पद आए कितने, 112 करोड़ 83 लाख 58 हजार और 5 इतने तो पद हुए, और एक एक पद में अक्षर कितने हैं अपुनरुक्त, वो 1634 करोड़ 83 लाख 7888। हाँ रिमाइंडर बताती हूँ, इसमें अंग बाह्य श्रुत के जो है उसके अक्षर है 8 करोड़ 1 लाख 491 पेज पर है 8175 यानी 8010 8175 8175 इसको कहेंगे अंग बाह्यों के अक्षर 8175। हाँ अंग बाह्य के अक्षरों की संख्या ये, यानी इनमें से जो हमने देखा ना फुल फिगर के बाद जो रिमेनिंग अक्षर है, क्योंकि इसमें कोई एक टोटल पद नहीं होगा क्योंकि मध्यम पद की संख्या तो बहुत बड़ी है, तो इसको हम अक्षरों में गिन रहे हैं। तो पहले आया था शब्दों के इसमें अक्षर संख्या थे, तो संख्या थे नहीं इतने संख्या थे, ये हमको लगता है खाली ये थोड़े व्यंजन और थोड़े स्वर, ऐसा नहीं है, ये इतने सारे अक्षर है और उसमें से ये मध्यम पद इतने इतने होते हैं, और ऐसे 18,000 पदों का पहला आचार अंग है, सबसे छोटा। आगे आगे के पद भी बहुत है, लाखों में है। ये मूल 12 अंग और जो अंग प्रकीर्णक है, अंग बाह्य श्रुत है, उनकी ये टोटल संख्या इतनी है। 12 अंगों का टोटल वो 112 करोड़, और वो अंग बाह्य जिसको हम प्रकीर्णक कहते हैं वो ये रिमेनिंग अक्षर। अभी देखा ना 8,10,000, हाँ
ये अभी हमने अंग बाह्य के अक्षर देखे। अभी अंग के अक्षर आपको जानना है तो मैं कहूँगा आप लिख लेना चाहिए, तो बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ सम्यक ज्ञान चंद्रिका पृष्ठ क्रमांक 493 पे है, ये आप लिखना है तो लिख लीजिए, 1 8 4 4 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 5, ये अंग के अक्षर है।
नहीं, सभी अंग अंग बाह्य मिलकर इकट्ठी माइनस वन ये फिगर है।
इकट्ठी माइनस वन वाले,
ये इकट्ठी माइनस वन वाली फिगर है, अक्षरों की संख्या, शब्दों की नहीं, अक्षर।
ये इकट्ठी जो है, ये लास्ट 15 जो लिखा है उसकी जगह 16 करना
है। माइनस वन है ना ये, टोटल अक्षर हमने कितने देखे थे, इकट्ठी माइनस वन, तो इकट्ठी माइनस वन का ये प्रमाण लिखा है। इसका इकट्ठी नाम इसलिए था कि 18 से शुरू होता था, तो वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग करते करते इकट्ठी जो है सर्वश्रुत के ने, इसमें से अंग और अंग बाह्य दोनों की रचना हुई है। अब इसमें से वो तो 8 करोड़ वाले अक्षर माइनस कर दो तो रिमेनिंग वो सारे द्वादशांग के अक्षर होंगे, यानी जो हमने 112 करोड़ आदि जो हमने देखे ना, इतने पद है मल्टीप्लाइड बाय 1634 करोड़ 83,07,888, वो खाली द्वादशांग। ये फिगर आएगी, बिल्कुल आएगी, उसमें प्लस वो कर देना ना अंग बाह्य वाली, हाँ प्लस करना पड़ेगा उसमें, हाँ। एक मध्यम पद में इतने अक्षर, हाँ ऐसे पदों का एक आचार अंग हुआ, हाँ 18,000 मध्यम पदों का एक आचार अंग हुआ। अब आगे तो बातें बताएंगे सबकी, यानी सभी 11 ही 11 अंगों की टोटल भी 4 करोड़ कुछ हो जाती है, और अकेले 12वें अंग का जो है वो 108 करोड़ समथिंग, आगे अभी उसकी बात करेंगे बाद में, यानी 12वां अंग इतना बड़ा है, सबसे बड़ा। तो अभी यहाँ हम पढ़ते देखो, क्योंकि खाली ये इतने पौधे तो उसके जो वास्टनेस है ना, उसका कितना बड़ा होगा तो ख्याल में नहीं आता। ये तो एटलीस्ट हम इमेजिन कर सकते कि कितनी बड़ी यानी वो मूल शास्त्र कितने हो गए, और इसका लोप होते 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 तो इतना रह गया। षटखंडागम जो लिखित रूप से, उसको भी आजकल कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, ऐसा क्या बात है इतनी बड़ी। और जिसको आत्मा की रुचि है शास्त्र पढ़ते, अरे ये जानकर क्या, हमको तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा वास है ना तो ये तो ज्ञान का विषय है, और इसको जानने से ज्ञान का विकास हो रहा है क्या, क्या अधोगति हो रही है क्या, और हमको तो खाली क्या जानने, ये नहीं जानना तो क्या जानना, वो श्रद्धा हमको कैसे पकड़ा ये अपने आत्मा का क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं हमें देखो अभी यहाँ अभी इसको पढ़ेंगे, आचार अंग में विषय कौन सा है, देखो 100 पेज पर हमारे विषय चल रहे, देखो इनमें से आचार अंग 18,000 पदों के द्वारा, ये अभी पद का थोड़ा भले ये संख्या याद नहीं ले कोई बात नहीं, परंतु ये मध्यम पद इतना बड़ा होता है, और ऐसे जो 18,000 पद है वो ये आचार अंग में है, तो तो उसमें क्या बताया है, तो किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार खड़े रहना चाहिए, ये मुनियों की बात है। पहला ही पहला आचार अंग है उसमें मुनि धर्म की बात होगी, और सातवां नंबर का उपासक अध्ययन अंग है उसमें श्रावक की बात आएगी। तो किस प्रकार बैठना चाहिए, किस प्रकार शयन करना चाहिए, किस प्रकार भोजन करना चाहिए, किस प्रकार संभाषण करना चाहिए और किस प्रकार पाप कर्म नहीं बनता है, इस तरह गणधर के प्रश्नों के अनुसार अब इसके जो उत्तर है वो इसमें बताए। यत्न से चलना चाहिए, यत्न पूर्वक खड़े रहना चाहिए, यत्न से बैठना चाहिए, यत्न से यानी प्रयत्न पूर्वक, काहे का प्रयत्न, मुनियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए उठते समय, क्या सावधानी रखना है, हिंसा न हो इसकी सावधानी, ये यत्न पूर्वक करते हैं। नहीं तो हम भी प्रयत्न पूर्वक ही उठते हैं, कि गिरे नहीं ऐसे प्रयत्न, उसकी बात नहीं है। ये छोटा बच्चा भी बहुत यत्न से सीखता है उठने को, उसकी बात नहीं चल रही है। यत्न पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक यानी उनसे कोई पाप न हो, इस तरह से। कौन सा जैना? हाँ, सावधानी पूर्वक उसको। हाँ, तो जैना या यत्ना, यत्ना से जैना, ऐसा ये तो ऐसा ही ले लो। हाँ, यत्ना, जतन, जतन भी शब्द आता है ना, जतन करो, तो जतन के बदले जैन हो गया उसका। मूल तो संस्कृत प्राकृत से ये बातें आई है ना, ये ऊपर का पढ़ना रह गया, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको पूरा करते। यत्न से चलना चाहिए, यत्न पूर्वक खड़े रहना चाहिए, यत्न से बैठना चाहिए, यत्न पूर्वक शयन करना चाहिए, यत्न पूर्वक भोजन करना चाहिए और यत्न से संभाषण करना चाहिए। ये उसकी विधि भी कैसे होनी चाहिए उसका सब इसमें वर्णन आता है। इस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म का बंधन नहीं होता। देखो मुनि है, सम्यक दृष्टि है, अंतरंग में स्थिरता बहुत है, और उनको यदि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा चलो कहेंगे तो उसमें वो मैं शरीर का कार्य करता हूँ ऐसी मान्यता नहीं है बिल्कुल। और जिसको शरीर से भिन्न अपना अनुभव है उसी को ये कैसा शरीर कैसे आचरण करना कहा जाता है। परंतु ये तो अभी सम्यक दर्शन ज्ञान की तो बात ही नहीं है। ये जो आचार अंग आदि अभी पूरा तो अंग नहीं है, परंतु उसमें से जो कुछ बचा है, तो मुनि धर्म ऐसा, मुनि को ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए पढ़ते हैं तो ऐसा करने लगते हैं, और ऐसा करने से हम अपने को मुनि मानते हैं। ख्याल है? यानी अंदर के जो मूल बात है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली वो है ही नहीं है, और अकेला बाहर का खोखला डब्बा बॉक्स देखते हैं और वो और मान्यता और दृढ़ हो जाती है, क्योंकि ऐसा आचरण करूँ तो मैं मुनि बन जाऊँ, ये बात है ना वहाँ, तो मान्यता का दोष चालू रहता है और आचरण देख देख कर सुधारने की कोशिश करते हैं और अपने को मानते भी हैं मैं मुनि हूँ और इसी आचरण से मुझे मोक्ष मिलेगा। जैसे शास्त्र में उदाहरण आता है, कोई स्त्री जा रही थी, उसने देखा अन्य कोई महिला वहाँ कूट रही थी, क्या कूट रही थी उसने देखा, तो ये तो छिलका आता है ना, हाँ, तुष वाला, हाँ, यानी जो चावल आता है तो उसको छिलके के साथ आला, साड़ी के साथ मराठी में कहते हैं साड़ी वाला तांदूर, यानी वो क्या है, छिलके के साथ वाला है, तो उसको कूटना पड़ता है, क्या कहते हैं हम मराठी में उसको, कांड, सड़ने, यानी उसमें क्या होता है, चावल और वो भिन्न भिन्न हो जाता है, और चावल हैवी है तो नीचे चला जाता है, और बाजू में जो देख रहा है उसको ऊपर छिलका जो ऊपर चला आता है तो छिलका ही छिलका दिखता है, तो उसने क्या करे, तो मैं इसमें से चावल निकाल रही हूँ, उसने अच्छा है, तो उसने क्या किया, जो फोतरा नीचे पड़ा था उसको ही लेके घर गई और वो भी कूटने लगी फोतरा, क्योंकि उसने देखा था उसके फोतरा कूट रही थी, अंदर का चावल उसको दिख नहीं रहा था, तो उसने समझा फोतरा कूटने से ही चावल मिलेगा, तो फोतरा ही कूट रही है तो उसको चावल कब मिलेगा, वैसे जिसने आत्मानुभव कर लिया है, शरीर से भिन्न अपने को पहचान लिया है, आत्मा में स्थिरता बहुत बढ़ गई है, ऐसे जीवों को इस भाषा में उपदेश देंगे तो ऐसा चल, ऐसा कर, ऐसा कर, तो उसके उनके कोई मान्यता में अभी वो तो मान्यता बिल्कुल है और स्थिरता भी बहुत है, तो उनके ऐसे आचार किस तरह से होना चाहिए इसका वर्णन चाहिए वाली भाषा में आएगा। वो चरणानुयोग की भाषा चाहिए में होती है, फिर भी उनकी मान्यता में वहाँ कोई असर नहीं, यानी कोई परा यानी दोष नहीं लगता है, उनकी मान्यता बराबर है, विपरीत नहीं होती उनकी मान्यता। जीव चालता नहीं, बोलता नहीं, आचरण करता नहीं, शरीर की क्रिया करता नहीं, ये तो उनकी बिल्कुल अनुभव से सिद्ध बात है। और फिर उनको जब समझा जाता है कि ऐसा चलना चाहिए तो वो बराबर समझ जाते हैं और वैसे उनके सहज ही वैसी अवस्थाएं वैसा आचरण हो जाता है। परंतु ये डिफरेंस नहीं मालूम होने के कारण, अरविंद भाई आपका प्रश्न है ना हमेशा, तो क्या समझते हैं अन्य जो अज्ञानी है वो, नहीं नहीं ये आचरण करना चाहिए, यानी मैं कर सकता हूँ शरीर की क्रिया, ये मेरी क्रिया है और मैं नहीं करूँगा तो शरीर कैसे चलेगा, तो शरीर है तो चलो शरीर से काम करवा लो, ये आदि बातें बताई भी जाती है, कही भी जाती है और वैसे मानी भी जाती है ना। तो ये मूलभूत उसमें समझ में रख कर ये बातें पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म का बंध नहीं होता, यानी मुनियों का जो आचरण होता है, जो कुछ छठे गुण स्थान में है, तब तक उनका जो बोलना है, चलना यानी विहार करना है, भोजन के लिए जाते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, तब ये किस विधि से करते हैं कि जिसमें मिनिमम वो कोई पाप न हो, इसकी सावधानी रखते हैं, इत्यादि रूप से मुनियों के आचार का वर्णन करता है। इसका श्लोक हमने पढ़ा नहीं, ऊपर उसको पढ़ते हैं। कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सए कदम भुंजे ज भासे ज कदम पावम न बज्जई जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सए जदम भुंजे ज भासे ज एवं पावम न बज्जई। पहले कदम कदम आया, फिर जदम जदम आया। कदम यानी कथम, कैसे चलना चाहिए, चरे यानी चलना चाहिए। कदम चिट्ठे, कैसे खड़ा रहना चाहिए। कदम आसे कदम सए, किस प्रकार से शयन करना चाहिए वगैरह वगैरह। कदम बुझे जम यानी कैसे भोजन करना चाहिए। भाजे भाषे जैने भाषा कैसी होनी चाहिए आदि आदि। तो पावम न बच जाई कि जिस कारण पाप का बंध नहीं होगा, ये सब प्रश्न पूछे। और फिर नीचे जदम चरे जदम चिट्ठे यानी इस प्रकार यत्न पूर्वक, जदम यानी ये आपकी जैना आ गई यहाँ, जदम यानी यत्न पूर्वक, जद कहा उसको, इस तरह से 70-71 गाथा यहाँ हो गई। अभी सूत्र कृतांग ये दूसरे नंबर का अंग है, पहला कौन सा देखा हमने, आचारांग, और दूसरा है सूत्र कृतांग। 36,000 पदों के द्वारा, इसमें डबल हो गए, पहले 18,000 थे अब ये 36,000 हो गए। तो उसमें क्या बताएंगे, ज्ञान विनय प्रज्ञापना कल्प्याकल्प्य छेदोपस्थापना और व्यवहार धर्म क्रिया का प्ररूपण करता है, तथा यह स्वसमय और परसमय का भी निरूपण करता है, ये इसका विषय है। सूत्र कृतांग ग्रंथ का विषय क्या है, स्वसमय पर समय का निरूपण करना और बाकी ज्ञान विनय प्रज्ञापना कल्प्याकल्प्य आदि, यानी व्यवहार धर्म क्रिया का इसमें वर्णन है। तीसरा जो स्थानांग है उसमें 42,000 पद है, पहले 18 थे 36 है अब 42 है। ये 42,000 पदों के द्वारा एक से लेकर उत्तरोत्तर एक एक अधिक स्थानों का वर्णन करता है, उसका उदाहरण। स्थान यानी भेद, तो हम जीव सभी जीवों को इकट्ठा गिनना है तो उपयोग लक्षण कहेंगे, तो एक स्थान हुआ ना, जीवों के कितने स्थान हुए, भेद नहीं हुआ, सभी जीव एक में आ गए। उपयोग लक्षण हमने कहा ज्ञान दर्शन वाला वो जीव, तो सभी जीव उसमें आ गए, सिद्ध भी और संसारी भी और सभी, तो वो एक भेद हुआ, एक स्थान, तो उसको स्थान कहेंगे। देखो महात्मा अर्थात यह जीव, पढ़ना, हाँ पहले पढ़ेंगे, बराबर, अच्छा याद दिया। एको चेय महप्पो सो द्वियप्पो तिलक्षणो भणियो चदुसंकमणा जुत्तो पंचग गुणप्पहाणो य छक्का वक्कम जुत्तो कमसो सो सत्तभंगि सभाओ अठास ओणवट्ठो जीवो दसठाणियो भणियो। यानी जीवों के ही एक अपेक्षा, कौन सी अपेक्षा से एक है, कौन सी अपेक्षा से दो भेद होते हैं, कौन सी अपेक्षा से तीन भेद होते हैं, कौन सी अपेक्षा से जीवों के चार भेद होते हैं, इसका इसमें वर्णन है। तो इसका अर्थ हम देखते हैं नीचे, देखो। महात्मा अर्थात यह जीव द्रव्य निरंतर चैतन्य रूप धर्म से उपयुक्त होने के कारण उसकी अपेक्षा एक ही है, यानी चैतन्य उपयोग की अपेक्षा ये एक ही है। ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार का है। अभी भेद डालने के लिए हमने अपेक्षा ज्ञान दर्शन के लिए, चेतना कहेंगे तो एक, चेतना के दो डिवीजन किए ज्ञान और दर्शन, तो दो हो गए। या हम ऐसा भी कह सकते हैं संसारी और मुक्त की अपेक्षा दो हो गए, पुद्गल में भी ऐसा हम कहेंगे, पुद्गल जो है मूर्तिक है वो एक है और उसमें परमाणु और स्कंद ऐसे दो भेद कर दिए हमने। अब यहां तो जीव की बात हो रही है, अब तीन भेद रूप करेंगे, कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना से लक्षमान होने के कारण तीन भेद रूप है। लक्षमान होना है ना, हम जीव का लक्षण इन तीन अपेक्षाओं से करेंगे कि कोई ज्ञान चेतना वाले है, कोई कर्म चेतना वाले है और कोई कर्मफल चेतना वाले है। यानी चेतना की अपेक्षा ये तीन चेतना, पहले चेतना के दो भेद किए थे ज्ञान और दर्शन चेतना, अब ये अलग टाइप से अलग पद्धति से इसका वर्गीकरण किया कि कौन से, कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। तो ये क्या बात आती है, कर्मफल चेतना ज्ञान चेतना ये क्या है? तो चेतना यानी वो जीव अपने को किस रूप से अनुभव कर रहा है उसकी बात यहाँ बता रहे। जैसे एकेंद्रियादि जीव जो है उनको कोई अभी भय है, संकट है, दुख है, वहाँ जो कुछ चल रहा है, कर्मों का फल उनको मिल रहा है वहाँ, तो कर्मों के फल में दुखी हो रहे हैं और अपने को किस रूप अनुभवते हैं, तो मैं दुखी हूँ ऐसा वहाँ अनुभव चल रहा है, उसको कहते हैं कर्मफल चेतना वाले जीव। वो अपना अनुभव मान्यता की बात यहाँ नहीं हो रही, अपना ज्ञान की बात चल रही, चेतना की बात चल रही, तो अपना किस रूप में अनुभव चल रहा है, मैं दुखी हूँ ऐसा अनुभव चल रहा है, ये कर्म फल चेतना हुई। अभी कर्म चेतना यानी क्या है? तो वो दुख दूर करने का कोई उपाय करता है, राग द्वेष रूप परिणमता है, तो अपने को रागी द्वेषी अनुभव करने लगता है, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ आदि, अपने स्वयं का अनुभव किस रूप में हो रहा है, मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं बहुत श्रद्धालु हूँ, मैं बहुत दयालु हूँ, ये अपने को उस कषाय रूप से अनुभव करता है, तो उसको कहते हैं वो कर्म चेतना वाला जीव है। परंतु सम्यक दृष्टि क्या है, कर्म फल को जान रहा है, कर्म को यानी राग द्वेष को जान रहा है, परंतु अपने को उस रूप मान यानी जान नहीं रहा, अपने को उससे भिन्न जान रहा है, उसमें ज्ञान में अपनापन है, राग में अपनापन नहीं है, राग को भिन्न जान रहा है और अपना अनुभव किस रूप में हो रहा है, उसको ज्ञान रूप, ज्ञायक रूप में अनुभव चल रहा है उसका, हमेशा चले ना, शुद्धोपयोग में है उस समय की बात नहीं है, हर समय वो अपने को ज्ञान रूप ही उसका जानना चल रहा है, भले इसको पर चीज को जान रहा है परंतु वो तो उपयोग रूप भले पर में चल रहा है, फिर भी उसका अपना अनुभूति या अनुभव जो चल कहते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा उसका अनुभव हर समय चल रहा है। जैसी श्रद्धा हर समय चल रही है वैसा ज्ञान भी, भले वो उपयोग रूप या लब्ध रूप हो, वो भी हर समय चल रहा है, तो उसको कहते हैं ज्ञान चेतना। तो इस तरह से अगर हम भेद करेंगे सभी जीवों के तो वो भी तीन भेद हो जाएंगे। तो ये कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना से लक्षमान होने के कारण, यानी उनके द्वारा लक्षण बांधेंगे हम जीव को लक्षित करेंगे तो जीव तीन प्रकार के हम कह सकते हैं, अथवा उत्पाद व्यय और द्रव्य के भेद से तीन रूप भेद रूप है, उसमें उत्पाद रूप, व्यय रूप और द्रव्य रूप अगर चर्चा करेंगे तो वो तीन रूप हो जाते हैं। चार गतियों में भ्रमण करने की अपेक्षा इसके चार भेद है, तो कौन सी गति में अभी है, नरक गति है कि देवगति है कि ऐसे, उसके चार भेद होंगे। औदयिक आदि पांच प्रधान गुणों से युक्त होने के कारण इसके पांच भेद है। पिनांग आपको मालूम है ये पांच भाव कौन कौन से, याद है? यहाँ तो एक का नाम दिया है, क्या लिखा है? औदयिक लिखा है। और कोई ऐसा आपको याद है, कोई भी आपको जो मालूम है वो बताना। क्षौपशमिक भाव है, हाँ क्षायिक भाव है, हाँ तीन तो हो गए, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, हाँ पारिणामिक भाव, वो तो सभी जीवों में है ही ना, हाँ और एक ही रह गया। सम्यक दर्शन होता है पहले में, पहले तब क्या होता है? औपशमिक भाव, ख्याल है? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये पांच प्रधान भाव लिखे हैं। क्या लिखा है देखो, औदयिक आदि पांच प्रधान गुणों से युक्त, गुण कहो भाव कहो, या गुण कहा उसको, गुण यानी यहाँ औदयिक आदि वो तो पर्याय है, ख्याल है? पारिणामिक तो स्वभाव भाव है, स्वभाव है वो, पारिणामिक गुण रूप है, स्वभाव रूप है, द्रव्य रूप भाव है, और बाकी पर्याय रूप है भाव है, फिर भी भाव कहा उसको, सबको भाव कहा, सबको गुण कहा। ये जो अपेक्षित कथन होता है ना उसको बराबर समझ लेना, नहीं तो कोई देखो औदयिक को गुण कहा, शास्त्र पर उंगली रखना नहीं है ये, तो यहाँ ठीक करना है, हम यहाँ देख देख के गलत मान्यता को धारण कर लेते, ऐसा नहीं करना है। यहाँ गुण कहा परंतु ये इसको असाधारण भाव भी कहा है तत्वार सूत्र में, जीव के पांच असाधारण भाव है, असाधारण अन्य पुद्गल आदि में नहीं है, तो ये इसको असाधारण भाव कहते हैं, वो जीव की विशेषता है। राग द्वेष होना ये पुद्गल में या अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, जीव में पाया जाता है। अभी वो स्वभाव का विभाव उसकी चर्चा नहीं कर रहे, जीव में वो होता है तो उसको वहां स्वभाव भी कहेंगे, यानी जीव में पॉसिबिलिटी है ना, राग द्वेष कहां पाया जाता है, जीव में पाया जाता है, जीव के पर्याय में पाई जाती है, तो उसको वहां असाधारण भाव कहा है। विशेष भाव भी कहते हैं कहीं कहीं उसको, तो ये पांच भेद यानी जीवों के पांच भेद इसी के द्वारा हो जाएंगे। भवांतर में संक्रमण के समय, भवांतर यानी अन्य भव, हम कहते हैं ना देशांतर, अन्य देश में जाना उसको देशांतर कहते हैं, तो अन्य भव में जाता है जीव, यानी विग्रह गति में जब है, ट्रांजिट में है ना, अब ये मनुष्य देह छोड़ा और देह स्वर्ग का देह होने वाला है, तो वो ऊपर चला जाएगा, मगर ऊपर सीधा उसके हेड पर ही जाना कैसे होगा, कहीं अन्य विमान में उसको उसका जन्म होगा तो ऊपर जाके फिर जाएगा, या पहले ऐसा विदिशा में जाके फिर ऊपर सीधा चला जाएगा, विदिशा में नहीं मुख्य दिशाओं में। तो जो विग्रह गति में गमन होता है तब छह ही दिशा में गमन हो सकता है, या पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण या उत्तर, ऊपर या नीचे। अभी हम तो चाहे जैसे कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी एंगल में, अभी औदारिक शरीर के साथ हम कहीं भी आते जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि पूर्व में ही जाए चलो फिर जाए, ऐसा जैसे आप वो क्या कहते हैं शतरंज, उसमें हाथी कैसा चलेगा चेस में, तो सीधा ही चलेगा, या ऐसा कि भी चार दिशाओं में, वहां ऊपर नीचे नहीं है, नहीं तो वो जाता क्यों, थ्री डायमेंशन है नहीं ना उसका, और ये ऊंट तो तिरछा भी चला जाएगा। तो वैसे यहाँ क्या कहते हैं, विग्रह गति में यानी भवांतर करते समय वो छह ही दिशाओं में गमन कर सकता है, उस अपेक्षा अगर भेद करेंगे तो छह भेद हो जाएंगे, ये अलग अलग संक्रमण होना यानी जाना, भवांतर में संक्रमण के समय यानी जाते समय बदल दे। भवांतर में संक्रमण के समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे, इस तरह छह संक्रमण लक्षण अपक्रमों से युक्त होने की अपेक्षा, अपक्रम यानी उसका दिशा किस दिशा में जाते, तो विदिशा में नहीं जाते, नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाएगा, ईस्ट में जा सकता है, नॉर्थ में जा सकता है, वेस्ट में जा सकता है, वो तो इन बिटवीन वाली दिशा में नहीं जाएगा वो।
यहाँ पर ये समझा रहे कि मान लो 100 जीव है, 600 जीव है, तो 100 जीव पूर्व दिशा में जाएंगे, 100 जीव पश्चिम दिशा में जाएंगे, ऐसा उनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो 6 प्रकार, 6 स्थान जीवों के हो सकते हैं।
यानी यहाँ क्राइटेरिया अलग अलग लगाते हैं तो जीवों के अलग अलग संख्या में भेद होंगे। तो इसे एक से लगाकर उन्होंने शुरू किया, एक भेद, दो भेद, तीन भेद, चार भेद, पांच भेद, इस तरह से अभी 7 भेद कहते हैं। अस्ति नास्ति इत्यादि 7 भंगों से युक्त होने की अपेक्षा 7 प्रकार का है। अभी हमने देखा था ना, अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य, ये मूल 3 देखे हमने, उसके कॉम्बिनेशन अस्ति अवक, अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। और पहले एक एक को तो लिया ही था, अस्ति अलग, नास्ति अलग, अवक्तव्य अलग। तो ये 7 भंगों की अपेक्षा 7 प्रकार का। ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्मों के आश्रव से, वो श्रव नहीं श्रव चाहिए, 8 प्रकार के कर्मों के आश्रव से युक्त होने की अपेक्षा 8 प्रकार का है। यानी ज्ञानावरणादि 8 कर्म बांधता है, उसकी अपेक्षा उसके 8 अलग अलग भेद बताए। अथवा ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का तथा 8 गुणों का आश्रय होने की अपेक्षा 8 प्रकार का है। यानी 8 कर्मों के अगेंस्ट ये 8 गुण, तो उसकी अपेक्षा से भी हम 8 भेद कर सकते हैं। जीवादि 9 प्रकार के पदार्थों को विषय करने वाला, अथवा जीवादि 9 प्रकार के पदार्थों रूप परिणमन करने वाला होने की अपेक्षा 9 प्रकार का है। हम जो 7 तत्व कहते तो उसमें द्रव्य और पर्याय से भेद करते हैं, परंतु जब 9 पदार्थ कहेंगे तो सभी पर्याय रूप से होते हैं। तो जीव पदार्थ, अजीव पदार्थ, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, वो पुण्य पाप वगैरह उसमें जोड़ देना दो तो 9 पदार्थ कहलाते हैं। तो उसकी अपेक्षा से 9 प्रकार हो जाते हैं उसमें। अब ये 10 प्रकार करेंगे तो उसमें स्थावर में 5 स्थावर तो हमको मालूम है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, वनस्पति। वनस्पति में 2 भेद किए उन्होंने, कौन से, एक साधारण और एक प्रत्येक। यानी एकेंद्रीय के 6 भेद किए, फिर द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे 10 भेद हो गए। देखो इसको पढ़ती हूँ मैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक, साधारण वनस्पति कायिक, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति, चतुरेंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति के भेद से 10 स्थानगत होने की अपेक्षा, उसके 10 भेद किए ना, स्थान ने भेद किए, 10 प्रकार का कहा गया है। किसको? जीव को। जीव की बात चल रही है ना, और ये हम कौन सा शास्त्र देख रहे हैं? स्थानांग। स्थानांग यानी स्थान भेद, अलग अलग भेद, तो उसमें पुद्गल के भी भेद करेंगे, आकाश के भी। हम कहते हैं आकाश एक अखंड है, लोकाकाश, अलोकाकाश, ऐसे 2 भेद है, जहाँ अन्य द्रव्य रहते वो लोकाकाश, जहाँ अन्य द्रव्य नहीं वो अलोकाकाश। इसको कहते हैं स्थानांग, यानी अलग अलग स्थान यानी भेदों का इसमें वर्णन आता है। तो इस तरह से हमने अभी 4 अंग देखे, कौन कहेगा? हाँ, आचारांग, दूसरा सूत्रकृतांग, सूत्रकृतांग, तीसरा स्थानांग, 3 ही देखे हमने, चौथा अभी देखा नहीं है। हाँ, 3 ही देखे, आचारांग में 18,000, सूत्रकृतांग में 36,000 और स्थानांग में 42,000 पद, इसकी हमने चर्चा की है। अब ये बाकी जो चर्चा है उसके हम कल से बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो।